दूसरा तबारीख 21वां बाब। और यहोसफत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा यहोराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोसफत के बेटे थे ये थे, यानी अजराया और याहियल और जिक्रिया और अजराया और मिकाइल और सफतिया। ये सब शाह इसराइल यहोसफत के बेटे थे, और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेश कीमत चीजों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत यहोराम को दी, क्योंकि वो पहलौठा था। जब यहोराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हो गया और अपने को कवि कर लिया, तो उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के बाज सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। यहोराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था, और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और वो अखियब के घराने की मानिंद इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखियब की बेटी उसकी बीवी थी, और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा है। तो भी खुदावंद ने दाऊद के खानदान को हलाक करना ना चाहा, उस अहद के सबब से जो उसने दाऊद से बांधा था, और जैसा उसने उसे और उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की हुकूमत से मुनहरिफ हो गया और अपने ऊपर एक बादशाह बना लिया। तब यहोराम अपने अमीरों और अपने सब रथों को साथ लेकर अबूर कर गया, और रात को उठकर ओदोमियों को जो उसे और रथों के सरदारों को घेरे हुए थे मारा। सो अदोमी यहूदा से आज तक मुनहरिफ हैं, और उसी वक्त लिबना भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया था। और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मकाम बनाए और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया और यहूदा को गुमराह किया। और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने बाप यहोसफत की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राह पर चला है, और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया, जैसा अखियब के खानदान ने किया था, और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख, खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा, और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहां तक कि तेरी अंतड़ियां उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। और खुदावन ने यहोराम के खिलाफ फिलिस्तियों और उन अरबों का जो कूशियों की सिमत में रहते हैं दिल उभारा, सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी बीवियों को भी ले गए, ऐसा कि यहू आखस के सिवा जो उसके बेटों में सबसे छोटा था उसका कोई बेटा बाकी ना रहा। और इस सब के बाद खुदावन ने एक लाइलाज मर्ज उसकी अंतड़ियों में लगा दिया। और कुछ मुद्दत के बाद 2 बरस के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वो बुरी बीमारियों से मर गया। और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। वो 32 बरस का था जब सल्तनत करने लगा और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया पर शाही कब्रों में नहीं। दूसरा तबारीख 21वां बाब। और यहूसफ्त अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहूसफ्त के बेटे थे ये थे, यानी अज़राया और याहियल और ज़िक्रिया और अज़राया और मिकाएल और सफ़तिया। ये सब शाहे इसराइल यहूसफ्त के बेटे थे और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीजों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत यहूराम को दी क्योंकि वो पहलौठा था। जब यहूराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हो गया और अपने को कवि कर लिया तो उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के बाज सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और वो अखियब के घराने की मानिंद इसराइल के बादशाहों की राह पर चला क्योंकि अखियब की बेटी उसकी बीवी थी। और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा है, तो भी खुदावंद ने दाऊद के खानदान को हलाक करना ना चाहा उस अहद के सबब से जो उसने दाऊद से बांधा था और जैसा उसने उसे और उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की हुकूमत से मुनहरिफ हो गया और अपने ऊपर एक बादशाह बना लिया। तब यहूराम अपने अमीरों और अपने सब रथों को साथ लेकर अबूर कर गया और रात को उठकर ओदोमियों को जो उसे और रथों के सरदारों को घेरे हुए थे मारा। सो अदोमी यहूदा से आज तक मुनहरिफ हैं और उसी वक्त लिबना भी उसके हाथ से निकल गया क्योंकि उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया था। और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मकाम बनाए और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया और यहूदा को गुमराह किया। और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने बाप यहूसफ्त की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला बल्कि इसराइल के बादशाहों की राह पर चला है और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया जैसा अखियब के खानदान ने किया था। और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख, खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहां तक कि तेरी अंतड़ियां उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। और खुदावन ने यहुराम के खिलाफ फिलिस्तियों और उन अरबों का जो कूशियों की सिमत में रहते हैं दिल उभारा, सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी बीवियों को भी ले गए, ऐसा कि यहू आखस के सिवा जो उसके बेटों में सबसे छोटा था उसका कोई बेटा बाकी ना रहा। और इस सब के बाद खुदावन ने एक लाइलाज मर्ज उसकी अंतड़ियों में लगा दिया, और कुछ मुद्दत के बाद 2 बरस के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वो बुरी बीमारियों से मर गया। और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। वो 32 बरस का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही कब्रों में नहीं।